ओम शांति, ओम शांति। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कोड वर्ड क्या है? बाप दादा, बाप दादा। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कोड वर्ड है, कोड वर्ड होता है ना। तो जिसने इस शब्द को समझा, बाप दादा, उसने पूरा ज्ञान समझा। बाप दादा कौन है? शिव बाबा ब्रह्मा रथ में आते हैं, तो अभी गीत भी सुना, जिसने शिव बाबा के रथ को पहचाना, हाँ, उसका अनुभव किया, वो तो कभी भूल ही नहीं सकता। तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों कंबाइंड है, अभी भी कंबाइंड ही कहेंगे ना। शिव बाबा भल कहेंगे परमधाम से आते हैं, ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में है, लेकिन हम बच्चों के लिए कंबाइंड है, बाप और दादा। तो ब्रह्मा बाबा बाप है और शिव बाबा दादा है, ग्रैंडफादर। फिर ब्रह्मा हमारा दादा है, बड़ा भाई है, और शिव बाबा पिता है। तो बाबा कहते हैं दोनों को अलग नहीं करना, ब्रह्मा बाबा के थ्रू ही तो हम शिव बाबा को पहचान चुके सके हैं, इसीलिए याद भी उसी अनुसार ही करेंगे। तो आज बाबा ने इस पर बहुत जोर दिया है। और दूसरा एक कहावत है, कौन सा कहावत है? जीव घात महापाप, जीव घात महापाप। मनुष्य अपने आप को खत्म करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि संसार में हमें जीना ही नहीं है, हम मर जाएंगे, क्योंकि बहुत दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, कई तकलीफें हैं, कई समस्याएं हैं, बहुत सिर पर कर्जा है, या जो कुछ भी कारण बताते हैं वो सब समझते हैं कि इनसे हम छुटकारा पाए तो अपने आप को खत्म कर देते हैं। परंतु वो जीव घात होता है, आत्महत्या नहीं होती है। वैसे कहते हैं आत्महत्या, लेकिन आत्मा तो कभी मरती नहीं है। और ही बाबा ने कहा है आज कि अगर ये जीव हत्या की, अपने आप को ही खत्म किया, तो और ही ज्यादा कष्ट पाएंगे आगे चल के, क्योंकि एक टाइम पर अपने आप को खत्म किया तो आत्मा को कष्ट तो होगा ही, ज्यादा ही होगा, क्योंकि शरीर थोड़ी भोगता है, भोगती तो आत्मा है ना। अब शरीर को खत्म किया, आत्मा तो नहीं खत्म होती, तो आत्मा को तो और भी आगे जन्म में और भी कष्ट होगा। इसीलिए हमेशा यही ध्यान रखो, बाबा यही कहते हैं, शरीर में हम जितना रहें उतना हम बाबा को याद करेंगे, चाहे कैसा भी शरीर हो, चतियां लगा करके भी हमें जीना है, इसी शरीर में रहना है, ताकि हम बाबा की सेवा भी कर सके, चाहे और न सही, कम से कम मनसा सेवा तो कर ही सकते हैं ना। तो इसीलिए आज बाबा ने इसके लिए भी बहुत सावधान किया है। पर आज तो हम देख रहे हैं रोज समाचारों में क्या क्या सुनते हैं, कैसे, हाँ, आज बाबा ने कहा 21 मार से नीचे गिरते हैं, 5 मार से गिरेंगे तो हो सकता है फिर भी बच जाए, पर 21 मार्च मार, हाँ, माना आजकल तो मकान भी कितने बड़े बड़े टावर्स बनाते हैं, तो कोई अगर ऊपर रहता हो और वहां से गिरे तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि ये जीवघात महापाप है, और तो कई पाप हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा पाप है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य, आज 6/1/2026 है। मीठे बच्चे, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है, दोनों का इकट्ठा पाठ चलता है, इसमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। किसमें संशय नहीं आना चाहिए? मीठे बच्चे, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है, दोनों का इकट्ठा पाठ चलता है, इसमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। प्रश्न है, मनुष्य दुखों से छूटने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं, जिसको महापाप कहा जाता है? बताया ना अभी, मनुष्य दुखों से छूटने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं, जिसको महापाप कहा जाता है? उत्तर है, मनुष्य जब दुखी होते हैं तो स्वयं को मारने का यानी खत्म करने के अनेक उपाय रचते हैं, जीव घात करने की कोशिश करते हैं, जीव घात करने की सोचते हैं, समझते हैं इससे हम दुखों से छूट जाएंगे, परंतु इन जैसा महापाप और कोई नहीं, वह और ही दुखों में फंस जाते हैं, क्योंकि यह है ही अपार दुखों की दुनिया। अब जो दूसरा जन्म मिलेगा वो इससे भी बदतर ही मिलेगा ना, तो क्या सुख दुखों से हम भाग सकेंगे? तो बाबा कहते हैं, क्योंकि ये है ही अपार दुखों की दुनिया। ओम शांति। बच्चों से बाप पूछते हैं, अब ये दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, बच्चों से बाप पूछते हैं, तो इनको और शब्दों में क्या कहेंगे, आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं। आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं, ये तो जानते हो हम परम पिता परमात्मा के सामने बैठे हैं, उनको अपना रथ तो है नहीं, शिव बाबा को अपना रथ तो है नहीं, ये तो निश्चय है ना कि इस भ्रकुटी के बीच में बाप का निवास स्थान है, ब्रह्मा की भ्रकुटी के बीच में शिव बाबा का भी निवास स्थान है। बाप खुद कहते हैं, मैं इनकी भ्रकुटी के बीच में बैठता हूँ, इनका शरीर लोन पर लेता हूँ, आत्मा भ्रकुटी के बीच है तो बाप भी वही बैठते हैं। ब्रह्मा की आत्मा के बाजू में ही बाबा कहते हैं, मैं भी बैठता हूँ। ब्रह्मा है तो शिव बाबा भी है, ब्रह्मा नहीं तो शिव बाबा बोलेंगे कैसे? ऊपर में शिव बाबा को तो सदैव याद करते आए, भक्ति मार्ग में भी याद करते आए ना, भगवान का ऊपर, ऊपर वाले, ऊपर वाला जाने, तो भगवान को ऊपर तो याद करते आए। अब तुम बच्चों को पता है हम बाप के पास यहाँ बैठे हैं, ऐसे नहीं कि शिव बाबा ऊपर में है और उनकी प्रतिमा यहाँ पूजी जाती है। हाँ, ये समझने की बातें हैं, शिव बाबा ऊपर तो है लेकिन यहाँ उनकी प्रतिमा पूजी जाती है, तो हम कहाँ याद करें, ऊपर याद करें, यहाँ याद करें, ब्रह्मा रथ में रियायत करें? हाँ, ये बाबा कहते, ये भी गुह्य पहेली है। तो ये बातें बहुत समझने की है, तुम तो जानते हो बाप ज्ञान का सागर है। अब ज्ञान कहाँ से सुनाते हैं, क्या ऊपर से सुनाते हैं? ज्ञान सुनाने के लिए तो उनको मुख चाहिए, तो मुख तो यहीं मिलेगा ना इस साकार लोक में। क्या ऊपर से सुनाते हैं? यहाँ नीचे आया है, ब्रह्मा तन से सुनाते हैं। कई कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते, वो भी विरोध करते थे पहले बहुत, इनका फोटो क्यों रखा है, हम इनको नहीं मानते, हम तो परमात्मा निराकार को मानते हैं। तो कई कहते हैं ब्रह्मा को नहीं मानते, परंतु शिव बाबा खुद कहते हैं, वो परमात्मा खुद कहते हैं कि ब्रह्मा तन द्वारा, कहते हैं ब्रह्मा तन द्वारा कि मुझे याद करो। तो ब्रह्मा तन तो माध्यम है ना, ये समझ की बात है ना। लेकिन माया बड़ी जबरदस्त है, अब बीच में माया आ गई है, माया बड़ी जबरदस्त है, एकदम मुंह फिराकर पिछाड़ी कर देती है। अब ऐसे किसको थप्पड़ मारो तो साइड में हो जाएगा सिर, लेकिन माया तो इनसे भी बदतर है, खाली थप्पड़ नहीं मारती है, मुंह ये उल्टा कर देती है एकदम आगे से पीछे। तो बाबा कहते हैं माया एकदम मुंह फिराकर पिछाड़ी कर देती है। अब तुम्हारा कांध तो शिव बाबा के सामने किया, हमारा कान शिव बाबा के सामने है, और माया ऐसी थप्पड़ मारती है जो एकदम पीछे दुनिया की तरफ मुंह ले जाती है। अब तुम्हारा कांध शिव बाबा ने सामने किया है, सम्मुख बैठे हो, फिर जो ऐसे समझते हैं कि ब्रह्मा तो कुछ नहीं है तो उनकी क्या गति होगी, क्या गति होगी, दुर्गति को पा लेते हैं। क्योंकि निराकार से कैसे मिलेंगे, साकार बिना तो मिलेंगे नहीं। इसीलिए देखो भक्ति मार्ग में नंदी का भी बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। कहते हैं शिव तक कोई बात पहुंचानी है तो नंदी के कान में कहो, तो नंदी के कान में कहेंगे तो शिव तक वो आपकी बात पहुंच जाएगी। डायरेक्ट बोलेंगे तो शायद ना भी पहुंचे, क्योंकि कान तो उनको है नहीं तो कैसे सुनेंगे भगवान। तो इसीलिए शिव के तो बड़े बड़े कान दिखाते हैं ना, सॉरी ब्रह्म ये नंदी के तो बड़े बड़े कान दिखाते हैं। तो खास हम गए थे भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर भी शिव का ही नाम है, वहां बहुत बड़ा शिव का मंदिर है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर तो वो भी वहां भी इतना बड़ा नंदीगण है। तो वो पहले ही बता देते हैं कि इनके कान में कुछ कहो, नंदी के इतने बड़े कान, तो शिव तक पहुंच जाएगा आपकी जो भी मन की इच्छा है ये सब उनके कान में कहो तो शिव तक पहुंच जाएगी आपकी बात। तो देखो बाबा कहते हैं, हाँ तो बाबा कहते हैं वो दुर्गति को पा लेते हैं, जो समझते ब्रह्मा तो कुछ नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है, मनुष्य पुकारते भी हैं ओ गॉड फादर, फिर वो गॉड फादर सुनते हैं क्या, अब उनको कान तो है नहीं तो कैसे सुनेंगे। उनको कहते हैं ना लिबरेटर आओ, या वहां बैठे लिबरेट करेंगे, आओ यहाँ आना है उनको, तो इसीलिए वहां तो बैठ के लिबरेट नहीं करेंगे ना, मुक्त नहीं करेंगे। कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आते हैं, जिसमें आते हैं अगर उनको ही उड़ा दे तो क्या कहेंगे, अब उनको ही उड़ा दिया तो फिर शिव बाबा तक कैसे पहुंचेंगे। नंबर वन तमो प्रधान है वो जिसने ब्रह्मा बाबा को उड़ा दिया, हमने कईयों को देखा बस खाली शिव बाबा का फोटो, ब्रह्मा बाबा कहीं भी नहीं है, तो धीरे धीरे कैसे भागंती हो गए। नंबर वन तमो प्रधान, निश्चय होते हुए भी माया एकदम मुंह फेर देती है, इतना उसमें बल है, किसमें माया में बल है, इतना उसमें बल है जो एकदम वर्थ नॉट अ पेनी बना देती है, कौड़ी तुल्य बना देती है माया। ऐसे भी कोई न कोई सेंटर्स पर है, बाबा के बच्चे कहलाते हैं लेकिन ऐसे है, इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहना, भल किसको सुनाते भी रहे, वो तो ब्रह्मा बाबा में नहीं रखता विश्वास, केवल शिव बाबा में रखता है, और वो दूसरों को चलो ज्ञान भी सुनाते हैं, बस सुनी सुनाई बातें ही सुनाएगा, परंतु वो जैसे पंडित मिसल हो जाते हैं, पंडित मिसल है वो, जैसे बाबा पंडित की कहानी बताते हैं ना, उसने कहा राम राम कहने से नदी पार हो जाएंगे, तो ये भी एक कहानी बनाई हुई है। इस समय तुम बाप की याद से विषय सागर से क्षीर सागर में जाते हो ना, तो उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में ढेर कथाएं बना दी है कि सागर पार नदी पार करने से तुम राम राम कह करके नदी पार हो जाएंगे, नाव की जरूरत ही नहीं है, तो ये भव सागर भी ऐसे पार हो जाएंगे। तो वो नदी का मिसाल देते, तो बाबा कहते ये नदी की बात नहीं है, वहां तो नाव चाहिए, लेकिन किससे पार हो जाएंगे, ये भव सागर शिव बाबा को याद करते करते ये भव सागर पार हो जाएंगे। तो बाबा कहते ये भी एक कहानी बनाई हुई है, इस समय तुम बाप की याद से विषय सागर से क्षीर सागर में जाते हो। तो उन्होंने भक्ति मार्ग में ढेर कथाएं बना दी है, ऐसी बात तो होती नहीं कि कोई पानी पर चल करके पार हो जाए, दूसरे एक छोर पर पहुंच जाए नदी के। ये तो एक कहानी बनी हुई है। पंडित औरों को कहता था, खुद बिल्कुल चट खाते में था, केवल दूसरों को कहता था पवित्र बनो, भगवान को याद करो, और खुद तो विकारों में फंसा हुआ था, तो चट खाते में था। खुद विकारों में जाते रहना और दूसरों को कहना निर्विकारी बनो, उनका क्या असर होगा? कोई असर नहीं होगा, अंदर तो मन खाएगा ना, भले कह भी देगा दूसरों को, लेकिन अंदर उसके तो मन खाएगा कि मैं तो हूं नहीं। ऐसे भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, खुद निश्चय में नहीं है, दूसरों को सुनाते रहते हैं, इसीलिए कहां कहां क्या होता है, खुद निश्चय है नहीं और दूसरों को सुनाते हैं, तो क्या हो जाता है, कहां कहां सुनाने वाले से भी सुनने वाले तीखे चले जाते हैं। अब उसने तो सुना, उसको अब क्या पता कि ये जो मुझे सुना रहा है ये खुद इसको निश्चय नहीं है, तो सुनने वाले को निश्चय हो जाता है और सुनाने वाला तो बाबा कहते हैं वो तो पीछे ही रह जाता है। तो सुनने वाले तीखे चले जाते हैं, जो बहुतों की सेवा करते हैं, खुद भी निश्चय है बहुतों की सेवा भी करते हैं, वही बाबा को प्यारे भी लगते हैं। तो कौन प्यारे लगते हैं बाबा को, जो खुद भी धारणा करते हैं, दूसरों की भी सेवा करते हैं, वो बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं। पंडित तो झूठा निकल पड़ा, तो उनको कौन प्यार करेंगे, जब पता चला कि अरे पंडित ही डूब रहा है तो कौन उसको प्यार करेगा। फिर प्यार उन पर चला जाएगा जो प्रैक्टिकल में याद करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर लेती है, बहुत हप हो गए बाबा कहते, बहुत हप हो गए या माया खा गई उनको। बाबा भी समझाते हैं अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, एक तभी क्या होगा, देखो बाबा ने आज भविष्य की बातें बहुत कही है, एक तरफ तो लड़ाई होगी, अभी भी देखो ना बहुत अमेरिका कई देशों को धमकी दे रहा है, हम तुम पर आक्रमण करेंगे ना, तो देखो एक तरफ लड़ाई होगी और दूसरे तरफ कर्मातीत अवस्था होगी। अब ऐसे ऐसे न्यूज आती है तो एकदम वैराग आ जाता है कि क्या हालत हो गई है दुनिया की और क्या क्या बदतर होगी। तो बाबा कहते फिर वो जैसे वैराग आता जाएगा तो तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होती जाएगी, एक तरफ लड़ाई होगी दूसरे तरफ कर्मातीत अवस्था होगी। पूरा कनेक्शन है हमारी कर्मातीत अवस्था का और विनाश का, आपस में कनेक्शन है। फिर लड़ाई पूरी हो जाने से ट्रांसफर हो जाएंगे, पहले रुद्रमाला बनती है, हाँ ट्रांसफर हो जाएंगे तो पहले कहाँ जाएंगे, घर जाएंगे, वहां शिव बाबा के गले में पिरोएंगे, रुद्रमाला के मणके बनेंगे। अब ये बातें और कोई नहीं जानते, तुम समझते हो विनाश सामने खड़ा है, अब तुम हो माइनॉरिटी और दुनिया में है तो मेजॉरिटी, अब इतने लोग हैं, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां उनकी भेंट में कितनी कम है, वो है मेजॉरिटी, तुम हो माइनॉरिटी, तो तुमको कौन मानेगा। उस समय तो वैसे भी कम थे बच्चे, लेकिन अभी तो बाबा के बहुत बच्चे बढ़ गए हैं तो लोग मानने तो लगे है ना, तो तुमको कौन मानेगा। जब तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी फिर तुम्हारे योग बल से बहुत खींच कर आएंगे। अभी किससे खींच कर आते हैं लोग, योग बल से खींच कर आएंगे। जितना तुमसे कट यानी जंक निकलती जाएगी उतना बल भरता जाएगा। ऐसे नहीं कि बाबा जानी जानन हार है, ऐसे नहीं कि सब जानते हैं बाबा, यहाँ आकर के सबको देखते हैं। ब्रह्मा बाबा तो जब आते थे एक एक को दृष्टि देते थे, एक एक को तो दृष्टि देते देते समझ जाते थे ये बच्चा कैसा है। यहाँ आकर सबको देखते हैं, सबकी अवस्था को जानते हैं, तो बाप बच्चों की अवस्था को नहीं जानेंगे क्या? हर एक पिता अपने बच्चे की अवस्था उसकी कैसी है वो तो जानता होगा ना, बाप बच्चों की अवस्था को नहीं जानेंगे क्या? सब कुछ मालूम पड़ता है, इसमें अंतर्यामी की बात नहीं है। ऐसे नहीं अंदर में क्या सोच रहा है वो जानेगा, लेकिन उसकी अवस्था कैसी है, स्थिति कैसी है, वो तो हर पिता अपने बच्चे को समझेगा। ऐसे नहीं इसमें अंतर्यामी की बात नहीं, अभी तो कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है, आसुरी बातचीत चलन आदि सब प्रसिद्ध हो जाते हैं। ये कैसे किसी से बात करता है, कैसे किसी से व्यवहार करता है, बाबा कहते हैं सब पता चल जाता है ना, तो प्रैक्टिकल बातें। तुम्हें तो दैवी चलन बनानी है, देवताएं सर्वगुण संपन्न है ना, अब तुमको ऐसा बनना है। कहाँ वो असुर और कहाँ देवताएं, कहाँ वो असुर कहाँ देवताएं, परंतु माया किसको भी छोड़ती नहीं है, पता तो चल जाता है ना, ये तो बिल्कुल जैसे देवता और ये तो जैसे असुर, माया किसी को छोड़ती नहीं है, छुई मुई बना देती है, कुछ कह दिया समझो थोड़ा भी कुछ ऐसे डांट दिया या कुछ कुछ ऐसा कह दिया तो बस एकदम पापा कहते हैं फिर छुई मुई बना देती है। वो माया छुई भी बना देते, एकदम निराश या मूड ऑफ ये सब हो जाता है, तो छुई भी बना देती है या एकदम मार भी डालती है। इसने मुझे ऐसे कहा ना, अब मैं सेंटर पर नहीं जाऊंगा। अब इसने कहा तो क्या, बाबा की बातें तो सुननी है नहीं, उसने कहा तो वो तो मनुष्य आत्मा है, तो बस सेंटर पर नहीं जाऊंगा तो खा जाएगी माया। तो बाबा कहते हैं एकदम मार भी डालती है, पांच सीढ़ी है ना, काम क्रोध लोभ अहंकार, तो ऊपर है पांचवी सीढ़ी है काम, तो उससे भी गिरे तो खत्म। पांच सीढ़ी है ना, दे अभिमान आने से ही ऊपर से एकदम नीचे गिरते हैं, गिरा और मरा। आजकल तो अपने को मारने के लिए कैसे कैसे उपाय रचते हैं, 21 मंजिल से कूदते हैं, 21 मंजिल से। आजकल तो कितनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं ना, तो ऊंची 21 मंजिल से कूदना भी कोई बड़ी बात नहीं है, अगर वहां जाकर टेरेस से कूद जाए और तो क्या होगा। तो 21 मंजिल से कूदते हैं तो एकदम खत्म हो जाते हैं, ऐसे न हो जो फिर हॉस्पिटल में पड़ा रहे। अगर एकदम एक मंजिल से कूदेगा तो शायद बच जाएगा, लेकिन 21 मंजिल से अगर कूदे तो क्या हालत होगी, क्या एक हड्डी भी नहीं बचेगी, सब चूर चूर। तो बाबा कहते हैं ऐसे ना हो फिर हॉस्पिटल में पड़े रहे, दुख भोगता रहे, पांच मंजिल से गिरे और न मरा तो कितना दुख भोगता रहेगा फिर। कोई अपने को आग लगा देते हैं, अगर कोई उनको बचा लेते हैं तो उनको कितना दुख सहन करना पड़ता है, मानो आग लगाई उसने अपने आप को और कोई गया उसको बचाने तो क्या होगा, आग तो थोड़ी बहुत तो लगी ना, तो चमड़ी तो जल गई, अब जल गई तो कितना उसको कष्ट होगा, दुख होगा, बच तो गया। अब अगर कोई उनको बचा लेते हैं तो उनको कितना दुख सहन करना पड़ता है जिसको बचा लिया। जल गए, जल जाए तो आत्मा तो भाग जाएगी ना, अभी इतना सारा जल गया, 90% बर्न इंजरीज हुई, चलो 10% नहीं, लेकिन उसमें उस शरीर में आत्मा क्या करेगी, कुछ भी नहीं कर सकेगी ना, तो आत्मा को तो उड़ जाना पड़ेगा, जबरदस्ती भी भागना पड़ेगा, है ना, जैसे कोई गाड़ी चला रहा हो और एक्सीडेंट हो जाए, जोरदार एक्सीडेंट, चलो बच भी गया, परंतु उस गाड़ी में बैठेगा क्या, बैठकर क्या करेगा, एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गई, तो निकलना पड़ेगा ना उसमें बैठ के, तो कुछ नहीं कर सकेगा, तो इसलिए उसको निकलना पड़ेगा। तो अभी इतना चूर चूर हो गया तो आत्मा को जबरदस्ती निकलना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं तो जल जाए तो आत्मा तो भाग जाएगी ना, इसलिए जीव घात करते हैं, शरीर को खत्म कर देते हैं, समझते हैं शरीर छोड़ने से दुखों से छूट जाएंगे। क्यों ऐसे करते हैं, समझते हैं शरीर छोड़ने से दुखों से छूट जाएंगे, परंतु ये भी महापाप है, और भी अधिक दुख भोगने पड़ते हैं, आगे जो जन्म मिलेगा उसमें और भी अधिक दुख भोगने पड़ते हैं। क्यों, क्योंकि ये है ही अपार दुखों की दुनिया, तो उसके बाद जो अगला जन्म मिलेगा वो तो इनसे भी बदतर मिलेगा, तो और ही ज्यादा दुख होगा। तो ये है ही अपार दुखों की दुनिया, वहां है अपार सुख। फिर बाबा यहाँ दुख का थोड़ा वर्णन करके फिर बाबा सतयुग की याद दिलाते हैं कि वहां तो है ही अपार सुख। तुम बच्चे समझते हो अभी हम रिटर्न होते हैं, वापस जा रहे हैं अपने घर, दुख धाम से सुख धाम में जाते हैं। अब बाप जो सुख धाम का मालिक बनाते हैं उनको याद करना है, इन द्वारा बाप समझाते हैं, ब्रह्मा द्वारा बाप समझाते हैं, चित्र भी है ना, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना। तुम कहते हो बाबा हम अनेक बार आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं, कितनी बार स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं, अनेक बार, गिनती से बाहर। बाप भी संगम पर ही आते हैं, जबकि दुनिया को बदलना है। तो बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को दुखों से छुड़ाकर सुख की पावन दुनिया में ले जाने। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन। अब ये थोड़ी समझते हैं हे पतित पावन बुलाना का मतलब क्या है, हे पतित पावन बुलाना, परंतु ये थोड़ी समझते हैं कि अब महाकाल को बुलाते हैं, क्योंकि पतित पावन आएगा तो क्या करेगा, सबको अपने घर ले जाएगा, पावन बनाकर घर ले जाएगा, तो शरीर तो त्यागना पड़ेगा ना। तो शिव बाबा को बुलाना, पतित पावन को बुलाना, महाकाल को बुलाना, अपनी मौत को बुलाना। तो महाकाल को बुलाते हैं कि हमको इस छीछी दुनिया से घर ले चलो। जरूर बाबा आएगा, हम मरेंगे तब तो पीस होगी ना, विश्व में शांति कैसे आएगी, जब इतनी जो जनसंख्या है वो कम हो जाएगी तभी तो शांति आएगी। हम मरेंगे तब तो पीस होगी ना, शांति शांति करते रहते हैं, अब शांति तो है परम धाम में, परंतु इस दुनिया में शांति कैसे हो जबकि इतने ढेर मनुष्य है, कितने मनुष्य है यहाँ, शांति कैसे हो। सतयुग में सुख शांति थी, अभी कलयुग में अनेक धर्म हैं, वो जब खत्म हो तब एक धर्म की स्थापना हो, तब तो सुख शांति हो ना, नहीं तो कैसे होगी सुख शांति, जब सब धर्म खत्म हो और एक धर्म ही को केवल, तब सुख शांति हो। हाहाकार के बाद ही फिर जय जयकार होगी। आगे चल देखना, अब और क्या देखना है हम सबको, मौत का बाजार कितना गर्म होता है, मौत का बाजार कितना गर्म होता है। तो विनाश तो जरूर होना है, एक धर्म की स्थापना बाप आकर कराते हैं, राजयोग भी सिखाते हैं, बाकी सब अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। गीता में कुछ ऐसे दिखाया नहीं है, हाँ वो सब धर्म कैसे खलास हो गए और एक धर्म आया, बाबा कहते उस रूप से गीता में दिखाया नहीं है। क्या दिखाया है गीता में, महाभारत में, कि पांच पांडव और एक कुत्ता हिमालय में गल गए, वो तो चार तो गल गए, द्रौपदी भी गल गई, खाली युधिष्ठिर बचाए कुत्ते के साथ, स्वर्ग में जाने लिए। तो पांच पांडव और कुत्ता हिमालय में गल गए। फिर अच्छा रिजल्ट क्या, इतना बड़ा महाभारत हुआ, उसका रिजल्ट क्या, स्वर्ग कहाँ आया? तो कहते वो स्वर्ग में गया। अब कोई और स्वर्ग थोड़ी आएगा, ये सृष्टि तो स्वर्ग बनेगी ना। तो बाबा कहते हैं फिर प्रलय भी दिखा दिए। जलमयी तो भल होती है, जलमयी होती है, सब जलमग्न हो जाता है, परंतु सारी दुनिया तो जलमयी नहीं हो सकती है ना, क्योंकि कुछ लोग तो बचेंगे ना। सब कुछ जलमग्न हो जाए तो कोई भी नहीं बचेगा, लेकिन सब तो नहीं जलमग्न होता, कोई तो बचते हैं ना। परंतु सारी दुनिया तो जलमयी हो नहीं सकती। भारत तो अविनाशी पवित्र खंड है, उसमें भी भारत अविनाशी खंड है, उसमें भी आबू सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, है ना। शांति स्तंभ पर लिखा हुआ है, आबू सभी तीर्थों में महान तीर्थ है, जहां बाप आकर तुम बच्चों के द्वारा सर्व की सदगति करते हैं। दिलवाला मंदिर में कितना अच्छा यादगार है। दिलवाला मंदिर में 108 कोठरियां हैं। बाबा कहते ये तुम्हारी तो यादगार है ना, एक एक कोठी में एक एक तपस्या कर रहे हैं, कितना अच्छा यादगार है, कितना अर्थ सहित है। परंतु जिन्होंने बनाया वो नहीं जानते, अब 1000 साल पहले बना, उनको क्या मालूम ये 108 कोठरियां बना रहे हैं, ये किसकी यादगार है, वो नहीं जानते हैं। फिर भी अच्छे समझू तो थे ना, ये तुम्हारा यादगार बना लिया। द्वापर में जरूर अच्छे समझदार होंगे, अब ये तो 1000 साल पहले बना है तो कलयुग ही होगा ना उस समय भी तो। परंतु द्वापर में तो फिर भी बहुत अच्छे समझदार थे, जो बहुत पुराने पुराने मंदिर है उनमें कैसी मीनाकारी है, कितना सुंदर उनका वो बाहर से बनाते रहे हैं, तो इसीलिए वो तो बहुत ही थे, अच्छे थे। अभी तो कोई ऐसा बनाएगा भी नहीं। तो बाबा कहते हैं कितना अच्छा यादगार है, कितना अर्थ सहित है, परंतु जिन्होंने बनाया वो नहीं जानते हैं। फिर भी अच्छे समझू तो थे ना, द्वापर में जरूर अच्छे समझदार होंगे। कलयुग में होते हैं तमो प्रधान, द्वापर में फिर भी तमो बुद्धि होंगे, द्वापर में तो तमो रजो बुद्धि होंगे। सब मंदिरों से ये ऊंच है। कौन सा मंदिर सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? बाबा कहते हैं जहां तुम बैठे हो। कौन कहां बैठे हो? हाँ, मधुबन में। हाँ, ताली बजाओ, मधुबन में बैठे हैं, सबसे ऊंचे मंदिर में बैठे हैं। कितना सुंदर ये बाबा का मंदिर है। तो बाबा कहते हैं सबसे सब मंदिरों से ये ऊंच है जहां तुम बैठे हो। अभी तुम देखते रहेंगे। हाँ, देखना, बाबा कहते हैं देखते रहेंगे। क्या देखते रहेंगे? विनाश में होलसेल मौत होता है, होलसेल और रिटेल होता है, खुदरा और थोक। तो पहले तो भाई थोड़े एक एक करके मरते होंगे, तो थोक माल है एक एक लेते हैं, परंतु जहाँ खुदरा है खुदरा, लेकिन जो होलसेल होता है थोक, हाँ तो भाई या तो थोक माल मिलता है या एक एक चीज नहीं मिलती है। तो बाबा कहते विनाश भी ऐसा ही होगा, थोक में मरेंगे, होलसेल में मरेंगे। तो बाबा कहते हैं अभी तुम देखते रहेंगे, विनाश में होलसेल मौत होगा, होलसेल महाभारी लड़ाई लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे, बाकी एक खंड रहेगा। सब खत्म हो जाएंगे या कैसे, सब मिल करके एक ही खंड रहेगा, और वो खंड का नाम क्या होगा? भारत। भारत बहुत छोटा होगा, बाकी सब खलास हो जाएंगे। स्वर्ग कितना छोटा होगा सोचो तो, कहाँ इतनी बड़ी धरती और उसमें स्वर्ग सतयुग, वो भी केवल एक भारत, और वो भी बाबा कहते हैं जैसे पीपल के पत्ते की तरह होगा, वो सब जो भी मिल जाएंगे धरती मिलकर के पत्ते की, पीपल के पत्ते की तरह हो जाएंगे उसका आकार। तो बाबा कहते हैं बाकी एक खंड रहेगा, भारत बहुत छोटा होगा, बाकी सब खलास हो जाएंगे, स्वर्ग कितना छोटा होगा। अभी ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, कोई को समझाने में भी देरी लगती है। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, यहाँ कितने ढेर मनुष्य है और वहां सतयुग में कितने होंगे और वहां कितने थोड़े मनुष्य होंगे, ये सब खत्म हो जाएंगे। भगवान उवाच, ये सब खत्म हो जाएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी शुरू से, जरूर स्वर्ग से रिपीट करेंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी, फिर से होगी, तो कहां से शुरू करेंगे, सतयुग से ही शुरू करेंगे ना, तो जरूर फिर सतयुग स्वर्ग से रिपीट करेंगे। पिछाड़ी में से, पिछाड़ी में तो नहीं आएंगे, हाँ वैसे नहीं, लास्ट से शुरू करेंगे हिस्ट्री, शुरू से हिस्ट्री शुरू करेंगे। ये ड्रामा का चक्र तो अनादि है, जो फिरता ही रहता है, इस तरफ कलयुग और उस तरफ सतयुग। हम संगम पर हैं, ये भी तुम समझते हो, हम संगम पर हैं, बाबा कहते ये भी तुम समझते हो। बाप आते हैं, बाप को रथ तो जरूर चाहिए ना, तो बाप समझाते हैं, अभी तुम घर जाते हो। अब बाबा शिव बाबा ब्रह्मा रथ पर आकर कहते हैं अभी तुमको घर चलना है, तो बाबा कहते तुम तो बाप समझाते अभी तुम घर जाते हो, फिर ये लक्ष्मी नारायण बनना है तो दैवी गुण भी धारण करनी चाहिए, ये भी तुम बच्चों को समझाया जाता है। रावण राज्य और राम राज्य किसको कहा जाता है, पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं, ये खेल का राज बाप बैठ समझाते हैं। बाप नॉलेजफुल बीज रूप है ना, चैतन्य है, वही आकर समझाते हैं। बाप ही कहेंगे सारे कल्प वृक्ष का राज समझा, ये बाप ही, बाप के सिवाय कोई नहीं कह सकता कि सारे कल्प वृक्ष का राज समझा, इनमें क्या क्या होता है, कल्प वृक्ष में क्या क्या होता है, तुमने इसमें कितना पाठ बजाया है, आधा कल्प है दैवी स्वराज्य और आधा कल्प है आसुरी राज्य। अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं उनको बुद्धि में नॉलेज रहती है। बाप आप समान बनाते हैं ना, टीचर्स में भी नंबरवार होते हैं, कोई तो टीचर होकर भी फिर बिगड़ पड़ती है। हाँ टीचर है, सेंटर संभाल रही है, फिर एकदम नाराज हो गई, बिगड़ पड़ी है, हाँ बिगड़ गई और बिगड़ पड़ी और छोड़ दिया, घर चली गई, ऐसे भी कई हैं, बिगड़ पड़ती है। बहुतों को सिखाकर फिर खुद खत्म हो गए, बहुत गए, बहुतों को सिखाकर फिर खुद खत्म हो गए। छोटे छोटे बच्चों में भी भिन्न भिन्न संस्कार वाले होते हैं, हाँ कई छोटे बच्चे तो इतने चंचल होते, इतने चंचल, एक सेकंड भी बैठ नहीं सकते कई बच्चे, और कई बच्चे देखो इतने शांत होके बैठते हैं, हाँ कितना अंतर होता है। तो बाबा कहते हैं छोटे छोटे बच्चों में भिन्न भिन्न संस्कार वाले होते हैं, कोई तो देखो नंबर वन शैतान, इसको भी पकड़ेगा, उसको तोड़ेगा, उसको गिराएगा, उसको ये करेगा, हाँ या उसको धक्का देगा, सब नंबर वन शैतान। और कोई बाबा कहते हैं कोई फिर परिस्थान में जाने लायक, इतना प्यारा बच्चा, उनको कहो योग करो, हाँ तो बैठ जाएगा, उसको गद्दी पर बिठा दो और बैठ के योग करेगा। तो बाबा कहते नंबर वन परिस्थान में जाने लायक। कई है जो न खुद ज्ञान उठाते न अपनी चलन सुधारते और सबको दुख ही देते रहते हैं, न चलन सुधारते न ज्ञान उठाते और ही सबको दुख देते रहते हैं। अब ये भी शास्त्रों में दिखाया है कि असुर आकर के छिप कर बैठते थे, इंद्र सभा में असुर आकर के छिप कर बैठा, असुर वन कितनी तकलीफ देते हैं, ये तो सब होता रहता है। बाबा कहते सब होता रहता है। ऊंच से ऊंच बाप को ही स्वर्ग की स्थापना करने आना पड़ता है। माया भी बड़ी जबरदस्त है, दान देते हैं फिर भी माया बुद्धि फिरा देती है। बाबा की इतनी सेवा की, धन से भी बहुत मदद किया, फिर बाबा कहते माया मुंह फिरा देती है। आधा को जरूर माया खाएगी, अरे बाप रे, बाबा कहते आधा को जरूर माया खाएगी, संभालना हाँ संभालना, बाबा ने तो देखो क्या कह दिया, आधा को जरूर माया खाएगी। तब तो कहते हैं ना माया बड़ी दुस्तर है, आधा कल्प माया राज्य करती है तो जरूर इतनी पहलवान होगी ना, आधा कल्प राज्य किए करती है तो इतनी पहलवान होगी ना, माया से हारने वाले की क्या हालत हो जाती है, क्या हालत हो जाएगी माया से हार खाने वाले की, देखा है कहाँ कैसे हार खा लिया माया से, दुनिया में चले गए और क्या उनका हाल हो जाता है। अच्छा अच्छा हाँ, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला कभी भी छुई मुई नहीं बनना है। देखा है छुई मुई का पेड़, देखा है जिन्होंने देखा है हाथ उठाओ, अच्छा सबने देखा है हाँ, उसके पत्ते इतने नाजुक होते हैं बस अभी छुआ तक भी नहीं है, थोड़ा सा ही दूर है एकदम वो मुरझाने लगते हैं वो पत्ती हाँ, तो छुई मुई कभी भी छुई मुई नहीं बनना, दैवी गुण धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। कोई कुछ भी कहे हाँ तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि उसका असर होना चाहिए, अगर वो सही बात कहता है तो बदल जाओ, सही नहीं है तो भूल जाओ, हाँ इसने क्या, पर छुई में तो नहीं बनना है ना, इसने क्यों कहा हाँ। तो बाबा कहते हैं दैवी गुण धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। दूसरा बाप का प्यार पाने के लिए क्या करना होगा, क्या कहा बाबा ने, बाप का प्यार पाने के लिए सेवा करनी है। लेकिन जो दूसरों को सुनाते हैं वो स्वयं भी धारण करना है, केवल कथनी नहीं होनी चाहिए, करनी भी साथ साथ होनी चाहिए। लेकिन जो दूसरों को सुनाते हैं वो स्वयं भी धारण करना है, कर्मातीत अवस्था में जाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव, साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। अभी भी कहेंगे ना बाप दादा हमारे सम्मुख है, देखो इतना बड़ा फोटो बाबा का रखा है हमारे सामने है बाप दादा, तो साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। तो अभी कंबाइंड और कौन कौन है, जैसे बाप दादा कंबाइंड है, अभी आप खुद को देखो, जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है, शिव और शक्ति कंबाइंड है, ऐसे पांडव पति और पांडव कंबाइंड है, शिव शक्ति शिव और शक्ति कंबाइंड है और पांडव पति कंबाइंड है, जो ऐसे कंबाइंड रूप में रहते हैं जुड़े हुए रहते हैं उनके आगे बाप दादा साकार में सर्व संबंधों से सामने होते हैं। अभी दिन प्रतिदिन और भी अनुभव करेंगे कि जैसे बाप दादा सामने आए, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं आंखों से देखेंगे, अनुभव होगा, अब ये भी अनुभव होगा जैसे बाबा आपके सामने आए और आपका हाथ पकड़ा, अनुभव होगा लेकिन सिर्फ एक बाप दूसरा न कोई, ये किनको अनुभव होगा? जिनकी बुद्धि में बस एक बाप दूसरा न कोई होगा, ये पाठ उनको पक्का हो, फिर तो जैसे परछाई घूमती है ना, ऐसे बाप दादा आंखों से हट नहीं सकते, ऐसे बाप दादा आपके सामने होंगे जैसे परछाई घूमती है, ऐसे बाप दादा आंखों से हट नहीं सकते, सदा सम्मुख की अनुभूति होगी ना, वो भी तो समय आना है। स्लोगन, माया जीत प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी व विश्व कल्याणी है। क्या? माया जीत प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी व विश्व कल्याणी है। अव्यक्ति शारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। क्या करो उसके लिए? जब आप अभी जीवन मुक्त बनो तो आपकी जीवन मुक्त स्थिति का प्रभाव जीवन बंद वाली आत्माओं का बंधन समाप्त करेगा। तो वो डेट कब होगी? जब सब जीवन मुक्त होंगे, कोई बंधन नहीं। किसको कहेंगे जीवन मुक्त? कोई बंधन नहीं, कोई दुख नहीं, कोई शोक नहीं, कोई कष्ट नहीं, सबसे जैसे उपराम न्यारे प्यारे। तो वो जब सब जीवन मुक्त होंगे, वो डेट कब होगी? जब सब जीवन मुक्त होंगे। हाँ, कब होगी? कोई बंधन नहीं। सब बंधनों में पहला एक बंधन है, वो बंधन खत्म हो जाए तो सब बंधन खत्म हो जाए। कौन सा एक बंधन? देह भान का बंधन, ये देह अभिमान, इसका बंधन, उससे मुक्त बनो। देह नहीं तो दूसरे बंधन स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। वैसे भी आत्मा उड़ गई तो शरीर के सब बंधन खत्म है ना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो, बाबा ने इतना ऊंचा लक्ष्य दिया है, उस तक पहुंचना है।